नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
जय बोलो परम पूज्यक्षार गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्यक्षार गुरु श्री ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु
परमिष्टि पाठ के अंदर दूसरा प्रश्न है। संसार में नमस्कार के योग्य व पूजा के योग्य कौन होते हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को पूर्णतः धारण करने वाले हैं या इनको धारण करके अरिहंत पद या सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वे ही संसार में नमस्कार व पूजा के योग्य होते हैं। दूसरी तरफ से जैनागम में यह भी कहा है कि जो संयमी होते हैं या उस संयम के फल से अरिहंत व सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वे ही नमस्कार के योग्य होते हैं। यही कारण है कि जैन धर्म के नमोकार मंत्र में पांच ही परमेष्टियों को नमस्कार किया है, अन्य किसी भी संसारी प्राणियों को वे असंयमी होने के कारण नमस्कार नहीं किया गया है। जैन दर्शन में कहा है असंजदम न वंदे, असंयमी वंदनी नहीं होता। यदि अन्य किसी को नमस्कार किया भी है तो नौ देवताओं को ही नमस्कार किया है, जो निम्न प्रकार हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमिष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। ये नव देवता हैं। इस प्रकार जैन धर्म में जैनियों को उपरोक्त पंच परमिष्टि ही और नव देवता ही नमस्कार और पूजा के योग्य कहे गए हैं। सार ये है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जहाँ होता है वहाँ वंदनीयता होती है या इसके फल स्वरूप मोक्षादि, अरहंत आदि पद को प्राप्त किए हों तो उन पदों की, रत्नत्रय पदों की, गुण पदों की उपासना होती है, पूजा होती है, नमस्कार आदि किया जाता है। रत्नत्रय तीन होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आज पंचम काल में इन तीनों की उपलब्धि होती तो है, पर निर्ग्रंथ दीक्षा लेने पर, दिगंबर दीक्षा लेने पर होती है। सम्यक दर्शन श्रावक अवस्था में भी हो सकता है, पर चारित्र जो होगा वह जिसको हम संयम कहते हैं या पूर्ण चारित्र कहते हैं, पूर्ण चारित्र, पाप रहित जीवन, संयम पूर्ण जीवन दिगंबर अवस्था में ही संभव है। सम्यक दर्शन सच्चाई का श्रद्धान, सत्याचरण, सत्य का विश्वास और लोक मूर्ताओं का परिहार, त्याग होने पर ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जहाँ ज्ञान होगा, यदि वह सम्यक ज्ञान है तो मूढ़ताओं का आचरण वहाँ हो नहीं सकता, और जहाँ ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही मूढ़ताओं का आचरण होता है। मूढ़ताएं यानी अंधविश्वास की बातें जो समझे बिना, देखे बिना, विचार किए बिना किए जाते हैं, वो सारे कार्य अंधमूर्ता या लोकमूर्ता के भीतर आते हैं। कल चर्चा चली थी, असंयमी जीव वंदनी नहीं होता। असंयमी कौन? तो जिनके जीवन में इंद्रिय विषयों का त्याग नहीं है वह जीव असंयम की कोटि में आता है। इंद्रिय विषय परिग्रह रूप हैं, बहिरंग 10 परिग्रह इंद्रियों के विषय, इनको रखना, इनकी सुरक्षा करना, इनकी आशा रखना, ये इंद्रिय विषय कहलाते हैं। इन्हीं इंद्रिय विषयों के कारण से संयम की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि इंद्रिय विषय हमें सांसारिक सुख देते हैं और इनका त्याग परमार्थ सुख देता है, आत्मिक सुख देता है। आत्मा का सुख परमार्थ सुख कहलाता है और पर पदार्थों से मिलने वाला सुख शारीरिक सुख व सांसारिक सुख कहलाता है। आत्मा और शरीर ये दोनों पृथक दो वस्तु हैं, इसका जीवन हम वर्तमान में जी रहे हैं। जीना तो सबके लिए है, सबको जीना होता है, सभी जी रहे हैं। एक जीव विवेक से जीता है और एक जीव के पास विवेक न होने से उसका जीवन भी जीने का तो होता है लेकिन स्वयं के लिए जी नहीं पाता, पर के लिए जीता है और पर को ही पाता है। पर क्या है? परद्रव्य पर है। स्व क्या है? आत्मा स्व है, स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य की रक्षा और स्वद्रव्य में आनंद, स्वद्रव्य में सुख की अनुभूति, यही लक्ष्य बनाकर जो परद्रव्य में अथवा परद्रव्य से उत्पन्न जो सुख है, उस सुख के त्याग के लिए जो तैयार हो जाता है, उसके जीवन में रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। इस संसार में, इस पूरे जगत में, पूरी दुनिया में ऐसे कौन हैं, यदि ये विचार करने के लिए हम अग्रसर होते हैं तो पता चलता है कि इंद्रिय विषयों का त्यागी एक दिगंबर मुनि ही होता है। बाकी जीव इंद्रिय विषयों को रखते हैं, और रखते हैं इसलिए दो प्रकार का संयम जो प्रकट होना चाहिए वह नहीं हो पाता। कौन सा संयम? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। क्योंकि परिग्रह इंद्रिय विषय है, परिग्रह रखेंगे तो इनको संभालने के लिए, इनकी रक्षा के लिए हमें सब कुछ करने पड़ते हैं। रखने के लिए घर चाहिए, घर के लिए ताला चाहिए, ताले से भी रक्षा नहीं होती हो तो और कोई चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, व्यक्ति चाहिए। तो केवल एक इंद्रिय विषय के पीछे एक परिग्रह नहीं, दो परिग्रह नहीं, परिग्रह जुड़ता जाता है, परिग्रह की संख्या बढ़ती है। और इस प्रकार से हम शरीर के सुख के लिए कितने सारे परिग्रह को इकट्ठा करते चले जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, उसका कोई अंत भी नहीं होता। यदि हम परिग्रह में ही सुख मानेंगे तो हम अज्ञान की कोटि में कहलाएंगे, और यदि हम आत्मा में सुख है ये मानेंगे तो हम ज्ञान की कोटि में आएंगे। एक श्रद्धा होती है, आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होता, आत्मा का असली सुख का भान जब तक हमको नहीं होता, तब तक अनादिकाल की परिपाटी के आधार से जिसको हम सुख समझा है, सुख माना है, जिस सुख में आस्था है, उसी को हम पाने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। यह हमारे लिए अधर्म है, अधर्म की कोटि में आता है, क्योंकि आत्मा का भान नहीं है, सच्चा सुख का भान नहीं है, और नकली सुख में एकमात्र आस्था श्रद्धा होती है, और उसी को पाने के लिए दिन रात वह प्रयासशील रहता है। यही कारण है कि उसको संयम की उपलब्धि नहीं होती। यदि हो भी जाए तो द्रव्य संयम की उपलब्धि हो सकती है। एक जीव ऐसा भी होता है, संपूर्ण विषयों का त्यागी होता है, परंतु विषय त्याग का राग, मोह, ममत्व भाव, लोभ भाव छूटता नहीं है। उसके न छूटने से वह भाव से तो संयमी नहीं होता, परंतु विषयों से दूर है, इसलिए प्राणी संयम उसके जीवन में आ जाता है, जीवों की रक्षा वह कर रहा है, उसके माध्यम से कोई भी जीव हिंसा नहीं होती। परिग्रह ही त्याग है तो हिंसा कैसी हो सकती है? बाह्य परिग्रह त्याग है तो हिंसा नहीं हो सकती। यदि ये हिंसा नहीं है तो बाह्य जीव रक्षा संबंधी जो धर्म है या व्रत है या संयम कहना चाहिए, द्रव्य संयम उसके जीवन में होता है, परंतु रागादि भावों को त्याग न करने के कारण भीतरी संयम नहीं रहता। भीतरी संयम की प्राप्ति के लिए कषाय भावों का त्याग आवश्यक होता है। कषाय चार हैं, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय, संजोलन कषाय। इसमें से बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करने के प्रति जो ममत्व भाव जगता है आत्मा के भीतर, वह ममत्व भाव आदि के तीन कषायों से जगता है। आदि के तीन चार है ना, संजोलन सहित एक संजोलन कषाय को छोड़ दो, आदि के तीन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में जीव को बाह्य वस्तुओं की अनिवार्यता लगती है, आवश्यक लगने लगते हैं और उनको ग्रहण करने के प्रति संकल्प विकल्प होने लगते हैं। इन तीन कषायों में से कोई भी कषाय का उत्पन्न हो जाए तो वह बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा नियम से करेगा। बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करे या न करे, 10 प्रकार के परिग्रहों में से किसी परिग्रह को ग्रहण करे या न करे, पर आशा नियम से जीवित रहेगी। देखो कैसी कैसी बातें हैं, अपन लोगों को अभी तक यह पता नहीं था कि लोभ क्यों होता है, क्रोध क्यों आता है, अहंकार क्यों जगता है, मायाचारी के परिणाम भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, इत्यादि इत्यादि ये बातें हमको आज तक समझ में नहीं आ रही थी। पर उसमें मूल में कारण कौन है अभी समझ में आ रहा है। पर वस्तुओं को ग्रहण करने के प्रति रागादि भाव ये किसी के कहने से नहीं आते या हम जानबूझकर नहीं करते, बल्कि इसमें भीतरी कारण है कषाय। कषाय में अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो तो पर वस्तुओं के प्रति नियम से ममत्व भाव रहेगा ही रहेगा, कामना रहेगी। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय हो तो उसके कारण से भी हमको पर वस्तुओं के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति ममत्व भाव अवश्य रहेगा। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में भी अवश्य ममत्व भाव रहता है, परंतु इन ममत्व भावों में बहुत ही फर्क पड़ता है। तीनों कषायों को लेकर के यदि हम विचार करते हैं तो इन कषायों का उदय, उदय के फल स्वरूप होने वाले भाव, भावों में बहुत अंतर पड़ता है। इसी को हमें अभी समझना है। बहुत ही मार्मिक बात है, विचारणी बात है और चिंतनीय बात है। अनंतानुबंधी कषाय को कैसे पहचाने, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को हम कैसे जाने, प्रत्याख्यानावरणी कषाय को हम कैसे पता लगाएं कि ये यही है, तो इसको भी हम अपने भावों के आधार से, अपने परिणामों के आधार से ही पता लगा सकते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का जो उदय होता है, देखो थोड़ा सा ये मन में बिंदु याद रखना है। कुछ बातें हैं, चार ही बातें हैं, अच्छे से ध्यान में रखना है। अनंतानुबंधी कषाय दो ही गुण स्थान तक हमें फल दे सकता है, बंध का कारण बन सकता है, आश्रव का कारण बन सकता है और हमें परेशान कर सकता है। अनंतानुबंधी कषाय दो गुण स्थानों में, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान सासाधन गुणस्थान है। इन दोनों गुणस्थान से यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे मन में अनंतानुबंधी कषाय संबंधित जो भाव उत्पन्न होते हैं, कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। किस गुणस्थान में जाना पड़ेगा अपने को? दूसरे से आगे। पहले में रहेंगे तो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होते ही रहेंगे। ये प्रश्न था ना कि हमको क्रोध क्यों आता है, मान क्यों होता है, लोभ क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर यही है, जब तक हमारी कषायें हमारे पास हैं और हम नीचे नीचे के गुणस्थानों में रहते हैं तब तक ये कषाय भाव छूट नहीं सकते। पहले गुणस्थान में रहेंगे तो ये कषाय होंगे ही होंगे। पहले गुणस्थान में जो जीव रहता है या दूसरे गुणस्थान में जो जीव रहता है, इन दोनों गुणस्थानों में रहते हुए चारों कषायों का फल भोगना पड़ता है। अनंतानुबंधी का फल भोगना पड़ेगा, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का फल भोगना पड़ेगा, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, चारों कषायों का फल भोगना पड़ता है। यदि हम पहले और दूसरे गुणस्थान से ऊपर उठते हैं तो हमको तीन कषायों का फल भोगना पड़ता है। किसको छोड़कर? अनंतानुबंधी को छोड़कर। यदि हम और दो गुणस्थान आगे बढ़ते हैं, तीसरे से भी और चौथे से भी उठकर हम पंचम गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, तो हमको दो कषाय का फल भोगना पड़ेगा। कौन कौन सा? प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन। और एक गुणस्थान आगे बढ़ते हैं तो हमको एक ही कषाय का फल भोगना पड़ेगा। कौन सी कषाय? संज्वलन कषाय। किस गुणस्थान में जाने पर? छठे गुणस्थान में जाने पर। फिर छठे से लेकर दसवें गुणस्थान तक इस कषाय का फल हमें भोगना पड़ता है। यदि हम दसवीं गुणस्थान से भी ऊपर उठ जाते हैं तो हमको कषाय का फल बिल्कुल भोगना नहीं पड़ता और हम हमेशा के लिए वीतरागी बन सकते हैं। परंतु ये जो कषाय फल भोगने के ये गुणस्थान हैं, ये टोटल कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक, 6ठे से लेकर 10वें तक संज्वलन कषाय का फल भोगना पड़ता है। 5म गुणस्थान में 2 कषाय का फल भोगना पड़ता है, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, और नीचे के गुणस्थान 4थे में 3 कषायों का फल भोगना पड़ता है, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन। और एक गुणस्थान नीचे आते हैं 3रे में, तो वहाँ पर भी हमको 3 कषायों का फल भोगना पड़ता है। अनंतानुबंधी नहीं है ना, यहाँ 3 कषायों का फल भोगना पड़ता है। और एक गुणस्थान नीचे उतरते हैं तो 4 कषायों का फल भोगना पड़ता है, और एक नीचे उतरते हैं तो 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व कर्म, इन 5 का फल भोगना पड़ता है। देखो, मिथ्यात्व अलग है और कषाय अलग। मिथ्यात्व का फल मिथ्या भावों से भोगना पड़ता है और कषाय का फल क्रोध, मान, माया, लोभ, इन भावों को धारण करता हुआ भोगना पड़ता है। तो देखो, जब हमें क्रोध आता है तब कषाय का उदय है या मिथ्यात्व का, क्या समझेंगे? कषाय का। हमको अहंकार आ गया तो ये मिथ्यात्व का फल है क्या कषाय का? कषाय का। और हमको छल कपट के भाव उत्पन्न हुए, मायाचारी भाव हो गए, सरल भाव नहीं रह पाए, कुटिल भावों की उत्पत्ति हो गई, ये किस कर्म का फल है? कषाय का ही फल है। और हमको लोभ जागृत होता है, ये मिथ्यात्व का फल है क्या कषाय का? कषाय का। कषाय की पहचान 4 से है, क्रोध भाव, मान भाव, माया भाव, लोभ भाव। और मिथ्यात्व की पहचान उस भाव से है जो भाव हमारे लिए अंधश्रद्धा के रूप में उत्पन्न होते हैं। सत्य को हम कभी कभी असत्य समझने लगते हैं, भ्रमित हो करके, समझ में न आने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण, उसका परिचय पूर्णतः न रहने के कारण, क्या सही क्या गलत ये पता न होने के कारण हम असत्य पर विश्वास करते हैं और सत्य को अविश्वास का विषय बनाते हैं। तो ये किस कर्म का फल? ये मिथ्यात्व के उदय का फल। मिथ्यात्व के उदय में जो सुख का कारण होता है उसको हम दुख का कारण समझने लगते हैं, और जो दुख का कारण होता है उसको सुख का कारण समझने लगते हैं। ये मिथ्यात्व कर्म का उदय का फल है। अब और ये 4 बिंदु तो ध्यान में आ गए, 3 बिंदु और ध्यान में रखना है। कषाय 4 होने से 4 बातें हमको ध्यान में आ गई, 3 बातें और ध्यान में रखना है। दर्शन मोहिनी कर्म कितने प्रकार का है? दर्शन मोहिनी कर्म 3 प्रकार का, कौन कौन सा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के विध उदय में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? अश्रद्धान के, यानी सच्चाई के प्रति अश्रद्धान, परंतु झूठ के प्रति श्रद्धान। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। ये दर्शन मोहनी तीन प्रकार का है, मिथ्यातु, सम्यक मिथ्यातु और सम्यक प्रकृति। मिथ्यातु का उदय, ये बिंदु ध्यान रखना है, मिथ्यात्व का फल पहले वाली प्रकृति, ये पहले नंबर की, इसका फल पहले गुणस्थान में ही मिलता है, आगे के गुणस्थानों में ये फल दे नहीं सकता और आ नहीं सकता। हम ऊपर के गुणस्थानों में रहेंगे तो मिथ्यात्व कर्म का फल नहीं मिलेगा। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो मिथ्यात्व का फल मिलने वाला नहीं है। यदि हम दूसरे गुणस्थान में भी हैं, मिथ्यात्व का फल मिलने वाला नहीं है, तो क्या सम्यक दृष्टि रहेंगे? नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं रह सकते। तो वहाँ पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो सम्यक तो क्यों नहीं दूसरे गुणस्थान में, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय तो नहीं है दूसरे में, पर अनंतानुबंधी का उदय है या नहीं? है। तो अनंतानुबंधी से भी सम्यक दर्शन का घात होता है या नहीं? होता है। अनंतानुबंधी क्रोध से भी सम्यक तो नष्ट हो सकता है। अनंतानुबंधी मान से, माया से और लोभ से, इनसे भी सम्यक दर्शन का घात हो सकता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तो सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए कितने कर्मों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? दो, मिथ्यात् और अनंतानुबंधी। और कितने गुणस्थानों से ऊपर उठना पड़ेगा? पहले दूसरे, इन गुणस्थानों से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, परंतु एक बीच में तीसरा गुणस्थान और है, इसके भीतर भी दर्शन मोहनी का उदय है। दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व का उदय पहले में और सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में, केवल तीसरे में, पहले से तीसरे तक नहीं, केवल तीसरे में। कषाय का कैसा है कि अनंतानुबंधी पहले से दूसरे तक, अप्रत्याख्यानावरणी पहले से तीसरे तक, चौथे तक, पहले से चौथे तक, प्रत्याख्यानावरणी पहले से पांचवे तक, और संज्वलन पहले से दसवें तक, पहले से दसवें तक। ये माइंड में पहला नोट कर लो, कौन सी कषाय किस गुणस्थान तक हमें फल दे सकता है। फिर से ताजा करता हूं, अनंतानुबंधी पहले से दूसरे तक, अप्रत्याख्यानावरणी पहले से चौथे तक फल देता है, और प्रत्याख्यानावरणी पहले से पांचवें तक फल देता है, और संज्वलन पहले से दसवीं तक फल देता है। ये विषय परफेक्ट, जैसे कंप्यूटर में आप सेव करते हैं ना, वैसा बिल्कुल सेव करके रखो, फिर बाकी विषय मैं कितना भी कैसा भी बोल दूं वो बिल्कुल सेट होता जाएगा और समझ में आता जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, यानी परेशानी नहीं आएगी। ये सेव कर लो, कर लिया सेव, सेव खाओ भी और सेव करो भी। अनंतानुबंधी पहले से दूसरे तक, अप्रत्याख्यानावरणी पहले से चौथे तक, प्रत्याख्यानावरणी पहले से पांचवें तक, संज्वलन पहले से दसवें तक। कितनी जल्दी शेव हो गया देखो। आत्मा एक कंप्यूटर है, इसका हम सदुपयोग नहीं करते, इसमें कुछ भी कोड़ा कचरा डाल रहे हैं, शेव कर रहे हैं। जिनवानी सेव करना चाहिए, जिनवानी की बातों को सेव करेंगे तो आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगती, आत्मा को सम्यक दर्शन आदि होने में समय नहीं लग सकता, ऐसा सेव करना है। ये सेव हो गए, अब तीन रह गई, सम्यक्त के घातक ये तीनों हैं दर्शन मुनि। मिथ्यात्व का उदय कितने गुण स्थानों तक, सिर्फ एक में ही वह हमको परेशान करता है। अतत्व श्रद्धान कराने में निमित्त बनता है केवल पहले गुणस्थान में, और सम्यक मिथ्यात्व तीसरे में, केवल तीसरे में, एक से तीसरे तक ऐसा नहीं लेना, नहीं। ये एक एक गुणस्थान में अपना अपना काम करते हैं, परंतु एक तीसरा वाला है वो अधिक गुणस्थानों में परेशान कर सकता है। मिथ्यात्व पहले में, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे में, और सम्यक प्रकृति ये तीसरी प्रकृति है। ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से 7 तक भेद संग्रह में ये बात है। इतना सेव कर लो, दर्शन मोहिनी को भी सेव किया, तीन प्रकार का है। क्या सेव किया देखो, मिथ्यात्व पहले में, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे में, और सम्यक प्रकृति 4थे से लेकर 7वें तक हमें परेशान करता है। बस ये सेव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे का विषय हम बहुत सरल तरीका से आपको गले उतार देते हैं। अब हमको सम्यक दर्शन धारण करना है तो ये 7 कर्म हैं, कौन कौन से, अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मोहिनी के 3, यही परेशान करते हैं, सम्यक दृष्टि बनने नहीं देते, धर्मात्मा बनने नहीं देते, सत्यात्मा बनने नहीं देते, सन्मार्ग पर चलने नहीं देते। सही क्या गलत क्या इसको सोचने में हमको विघ्न पैदा करते हैं, तो ये 7 ही हैं। इन 7ों को कंट्रोल में ले लिया तो आप सीधा 4थे गुणस्थान में पहुंच सकते हैं, पहले से 4थे में डायरेक्ट। ये गुणस्थान की सीढ़ियाँ ऐसी नहीं कि पहले गुणस्थान से सर्वप्रथम दूसरे में जाना पड़ेगा, फिर तीसरे में, फिर 4थे में, ऐसी वो सीढ़ियाँ नहीं हैं। भावों के आधार से हमको कर्मों को जीतना है और डायरेक्ट जिस गुणस्थान में हम जाना चाहते हैं जाना है। तो केवल हमको सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है, संयम को बाद में, और देश संयम को, सीमा संयम को भी बाद में, यानी प्रतिमा धारण ये बाद में देखेंगे। हम चाहते हैं कि पहले मिथ्यात्व से छूटकर सीधा सम्यक दृष्टि बने, तो किस गुणस्थान में जाना पड़ेगा, 4थे में जाना पड़ेगा, 4थे में जाना पड़ेगा। तो 4थे में जाने के लिए ये जो 28 मोहिनी कर्म हैं, 25 तो ये हो गए संजुलनादि, अकषाय तो छोड़ो, उनको समझो या न समझो उनसे इतना हानि नहीं है जितना कि ये 4 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और ये दर्शन मोहिनी 3, इनको समझना जरूरी है। क्योंकि संयम का जो घात होता है कषाय से और दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व से, यही काम करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना देखो, अभी आपको समझ में आएगा। हम सम्यक दृष्टि ही बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, सन्मार्ग का विश्वास जगाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले किस गुणस्थान में जाना पड़ेगा, 4थे में जाना पड़ेगा। और यदि एक बात हो गई, इस बात को भी सेव कर लो, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम सम्यक दर्शन को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ साथ प्रतिमाधारी श्रावक बनना चाहते हैं, सयमा सयमी बनना चाहते हैं, अनुरोध का पालन करना चाहते हैं। ये एक ही बात है, सयमा सयमी, अनुरोध का पालन, सब एक ही बात है। तो हम किस गुणस्थान में जाना चाह रहे हैं? पांचवे में। तो पांचवे में हम जाना चाहते हैं तो क्या करें? हम सीधा ही जाना चाहते हैं पहले गुणस्थान से पांचवे में। जा सकते कि नहीं सकते? जा सकते, पर पुरुषार्थ में क्या क्या पुरुषार्थ करें? तो देखो, मिथ्यात्व को तो जीतना पड़ेगा। हाँ, तीसरे में तो जाना नहीं है, तो छोड़ो उस बात को। मिथ्यात्व को तो जीतना पड़ेगा और अनंतानुबंधी कषाय को तो जीतना पड़ेगा, जो जाने नहीं दे रहे हमें। तो अनंतानुबंधी कषाय को भी जीतना है। और किसको जीतना पड़ेगा? जो हमें पंचम गुणस्थान में जाने नहीं देता, वो कषाय कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। सही बोल रहे हैं। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। तो देखो, मिथ्या तो एक, अनंतानुबंधी कषाय चार, और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय चार। ये कितने हो गए? नौ। नौ कषायों को दबाकर हम सीधा पंचम गुणस्थान में पहुंच सकते हैं। कोई श्रावक है, सम्यक दृष्टि बनने के साथ साथ वो अनुवृत्ति भी बनना चाह रहा है, तो सीधा किस गुणस्थान में पहुंचेगा? पांचवे में पहुंचेगा। और एक श्रावक ऐसा है जो पहले गुणस्थान में है और वह चाहता है कि डायरेक्ट मैं मुनि बनूंगा, संयम धारण करूंगा, दस परिग्रह भी छोड़ूंगा, सम्यक दर्शन भी धारण करूंगा। ये कैसा विचार कर रहा है? तो वह पहले गुणस्थान से किस गुणस्थान में पहुंच जाएगा? मुनि बन रहा है तो किस गुणस्थान में पहुंचेगा? छठे सातवें में पहुंचेगा। परंतु ध्यान रखना है, एक बात और सेव करना है, करते ही जाना है, थोड़ा बता तो जाऊंगा। पहले गुणस्थान से या नीचे के किसी भी गुणस्थान से जाने वाला जीव सीधा छठे में नहीं जाता, वो सीधा सप्तम में जाता है। फिर सप्तम में जाएगा तो छठे सप्तम में तो जीवन भर रहना ही है, हमेशा आना जाना होता है। छठा सप्तम आना जाना, ये प्रति सेकंद होता है, प्रति सेकंद छठे सप्तम में आना जाना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नियम है, इसलिए ऐसा होता है। छठे सप्तम जीवन भर मुनि छठे सप्तम में रहते हैं। यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो ध्यान में बैठ जाते हैं, तो ध्यान में बैठने के उपरांत फिर सप्तम गुणस्थान से आगे भी बढ़ करके फिर घाती कर्मों को नष्ट करके अरहंत परमेष्टि बनते हैं। जिनको मोक्ष जाना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, अरहंत बनना है, उस मुनि को, मुनि ही बनेंगे ना, क्या श्रावक बनेंगे अरहंत भगवान? नहीं, क्योंकि वो पंचम गुणस्थान वाले हैं, क्योंकि वो चौथे गुणस्थान वाले भी हो सकते हैं, तो ये तो मुनि हैं। मुनि को अरहंत बनना है तो छठे सप्तम में रहने से चलेगा क्या? नहीं, एक एक सीढ़ी और चढ़ना है। आठवें में जाना पड़ेगा, नवें में जाना पड़ेगा, दसवें में जाना पड़ेगा, ग्यारहवें में जाओ या न जाओ, ग्यारहवें में जाएंगे तो नियम से नीचे आना पड़ता है, और बारहवें में जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता। दसवें से बारहवें में गए, और बारहवें गुणस्थान में ये ध्यान, आत्मा का, निर्मल आत्मा का ध्यान अंतर मुहूर्त काल तक करने के उपरांत आत्मा अरहंत अवस्था को प्राप्त होती है। यह शरीर 500 धनुष आकाश में उठता है, और इस शरीर में रहने वाले सप्त धातु ये परम औदारिक शरीर के रूप में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात सप्त धातु नहीं रहते शरीर में पवित्रता आ जाती है। यानी इसमें रहने वाले जो अशुद्ध धातु थी ये सभी परमाणु शुभ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें कभी बदबू नहीं आएगी, इसमें सुगंधी फूटने लगती है। यही शरीर जो आज मल मूत्र से सहित है, मांस हड्डी रक्त इत्यादि से सहित है, ये पुद्गल परमाणु सारे कन्वर्ट होंगे, ये सुगंधित बन जाएंगे। दुर्गंधित पुद्गल परमाणु केवल ज्ञान के पश्चात सुगंधित बन जाते हैं। इसी को कहते हैं परम औदारिक शरीर। ये सबको संभव है, सबको संभव है, क्या मनुष्य को ही संभव है, मनुष्यों में मुनियों को ही संभव है, गृहस्थों को नहीं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं होती। ध्यान क्यों नहीं होता, इधर ध्यान दे के सुनना, क्यों नहीं होता वही बता रहे हैं। हाँ, सुनने के लिए भी इधर ध्यान चाहिए ना। श्रावकों को ध्यान क्यों नहीं होता, मन की चंचलता के कारण। मन चंचल क्यों है, परिग्रह के कारण। तो अगर परिग्रह छोड़ दें श्रावक तो मन चंचल रहेगा क्या, ध्यान लगेगा क्या, नहीं लगेगा फिर। हाँ, मन ऐसा है कि आपने मन को परिग्रह दे दिया तो बंदर के समान उसको लेके खेलेगा, वो खिलौना बनाएगा। और मन को आपने उसको छुड़ा करके, त्याग करा करके यदि आत्म तत्वों को देंगे, सात तत्व आत्मा की तत्व चर्चा को देंगे, आत्म तत्व की चर्चा में रह सकता है, तो ये खिलौना बन जाएगा। आत्मा परिग्रह को छोड़ेगा या मन परिग्रह को छोड़ देगा और सात तत्वों का चिंतन करना प्रारंभ करेगा, या यूं कह दो परिग्रह को छोड़ने के बाद मन परिग्रह में यदि जाता भी है तो कोई हानि नहीं, जाने दे उसको, खेलता है खेलने दे उसको, देखता है देखने दे, जानता है जानने दे, खेलता है खेलने दे, बार बार उधर जाता है जाने दे। परंतु मन को, मन से ये प्रतिज्ञा दिला दी है, मन को आपने ये व्रत दिया है, व्रत दिलाया है कि परिग्रह तेरा नहीं, तुझे परिग्रह छूना नहीं, परिग्रह में जाने का हम आपको निषेध नहीं कर रहे हैं, परिग्रह में जाओ लेकिन परिग्रह में क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय नहीं करना। ये बात सेव कर लेना अच्छी तरह से। मन को भेजते हो भेज दो, परंतु परिग्रह में जाने के बाद मन क्रोध मान माया और लोभ ये चार बातें न करे। उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम धर्म ध्यान है। और इससे उल्टा यदि मन परिग्रह में गया और क्रोध मान माया लोभ चार कषाय करने लगा, और इस तरह से कषाय करते हुए वह खेलने लगा परिग्रह के साथ, इन परिग्रहों को खिलौना बनाकर यदि कषाय के साथ खेलने लगा, क्रोध करता हुआ, मान करता हुआ, राग करता हुआ, लोभ करता हुआ खेलने लग गया, तब क्या करोगे? आर्त और रौद्र ध्यान करोगे। जब जब हम कषाय करते हैं आर्त रौद्र ध्यान होता है, और कषाय नहीं करते हैं तो धर्म ध्यान रहता है। खिलौना वही है, खिलौना बदलता नहीं, कषाय बदलती है, आत्मा वीतराग बनता है, कषा यदि नहीं है तो आत्मा वीतराग है, वीतरागी आत्मा धर्म ध्यान में रहता है या शुक्ल ध्यान में रहता है, परंतु दुनिया के सारी वस्तुओं को देखता है, जानता है। आप सोचो, केवली भगवान सारी दुनिया को जानते देखते हैं कि नहीं? पर केवली भगवान ये समझते हैं क्या, दुनिया मेरी है, ये परिग्रह मेरे हैं, बाह्य पदार्थ मेरे हैं, ऐसे केवली भगवान को विकल्प होता है मेरे मेरी, इस प्रकार विकल्प होता है? विकल्प नहीं होता। इसलिए तो केवली भगवान को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता। और अपन को देखो, वस्तु को देखते ही वस्तु के प्रति राग द्वेष आदि करने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? परिग्रह के कारण से। परिग्रह, बाह्य परिग्रह हानिकारक नहीं है, बाह्य परिग्रह के प्रति जो ममत्व भाव है, कषाय भाव है, वो हानिकारक है। उस कषाय भाव को हटा करके आप परिग्रह में जाओ, बाह्य परिग्रह में खेलते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और केवली भगवान यही करते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। वैसा हमको करना है। सर्वज्ञ केवली होने के उपरांत तीन लोक के सारे दृश्य उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। झलक रहे हैं कि झलक रहे हैं? और अपने अंदर भी ये झलकते हैं, लेकिन हमको आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको पता लगाओ। आर्त रौद्र ध्यान होता है, संक्लेश होता है, हम परेशान होते हैं। क्यों हो रहा है? एक ममत्व भाव के कारण। उन पदार्थ जहाँ पर हम पदार्थों में गए हैं उनके प्रति ममत्व है, इसलिए हम परेशान हो गए। अब भी फोन आया, जेब से निकाल करके देखा किसने किया, घर में अर्जेंट आना है। क्या हो गया? एक की डेथ हो गई है। आप शांत रह सकते हो क्या? और यही मोबाइल अरहंत भगवान के पास रखो या मुनि महाराज के पास रखो और उनको खबर पहुंचाओ, महाराज आपके लिए फोन उठाने वाला। हम तो उठाएंगे नहीं, उठाने वाला उठा करके हमको समाचार देगा भी तो मेरे मन में तरंग उठेंगे क्या सुख दुख के? नहीं है। इसी का नाम धर्म ध्यान है। हमारे मन में तरंग नहीं उठे और आपके मन में बहुत जोर के तरंगे उठ गए, यह ऐसा क्यों हुआ? ममत्व भाव के कारण। जब तक ममत्व भाव होता है पर पदार्थों के प्रति, तभी तक हमारे लिए आर्त रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान हो सकता है। ममत्व भाव के साथ चाहे मंदिर में बैठो, माला फेरो, आपका मन चंचल ही रहेगा ममत्व भाव के कारण। ध्यान में विघ्न करने वाला ममत्व भाव है, परिग्रह नहीं। परिग्रह तो पहले भी थे, अनंत काल तक रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे, इनको हटा नहीं सकते हम, इसी के बीच में रहना है। ये धरती अनादिकाल से थी और है, और उस धरती में थोड़ा सा हिस्सा अपना, 1-2 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ अपना हिस्सा बना के रखे हैं। और इसके साथ हमारा मालकियत है, और इसीलिए आर्त रौद्र ध्यान सदा होता रहता है कि नहीं होता रहता? और केवली भगवान के ज्ञान ने सबको अपना विषय बना रखा है। तीन लोक, नरक भी दिख रहा है, स्वर्ग भी दिख रहा है उनके ज्ञान में, और मध्य लोक तो है ही, दिख ही रहा है, वो यही है। और आपको भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं कि आपका खेत ही केवल दिख रहा है, दुनिया सभी दिख रही है। उन दुनिया के हर वस्तु के प्रति आपका कोई राग द्वेष नहीं, जो आपका नहीं उसके प्रति आप वीतरागी हैं, है कि नहीं? स्वर्ग से कोई आपको राग द्वेष है? नरक से, त्रियंश गति से? दुनिया में जितनी पर वस्तु हैं जो आप जिसके मालिक नहीं हैं, दुनिया के जिन वस्तुओं से आप मालकी मालिक नहीं है, मालकियत नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उन वस्तुओं को लेकर के तो आप वीतरागी हैं क्या रागद्वेषी हैं? वीतरागी हैं। बस आपको कितना छोड़ना है, थोड़ा सा। पूरी दुनिया छूट चुकी, हाथी पार हो गया है, पूंछ ही अटक गई है, उतना ही तो नहीं हो रहा है, उतना ही हो नहीं रहा है और उतने से पार होना है। मुनि महाराज बस पूंछ को छोड़कर बाहर आ गए हैं, इसलिए उनको आर्त रौद्र ध्यान से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और सदा ही धर्म ध्यान में रहते हैं। गृहस्थ अवस्था में धर्म ध्यान होता नहीं है ऐसा नहीं, धर्म ध्यान हो सकता है, वीतराग ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान तो सभी करते हैं, देवलोक भी करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं वो, आज्ञा विषय अपाय विषय नाम के दो धर्म ध्यान देवगति में भी हैं, मनुष्य गति में भी, गृहस्थ अवस्था में तीन ध्यान है। गृहस्थ अवस्था में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। महाराज जी तो नए नाम पड़ गए, आप ये और सेव करना पड़ेगा तो करो ना, थोड़ा थोड़ा करो। इस कंप्यूटर का सदुपयोग कब करोगे? आत्मा कंप्यूटर है, सेव करने के लिए है। आप क्या करते हैं, सेव करो खाने से सेव खाते हैं और उनको सेव करके रखते हैं कल खाने के लिए डिपॉजिट में और रखते। धर्म करना कोई कठिन बात नहीं है, केवल एक ममत्व पर विजयी हो जाओ, पर पदार्थों को समझो, ये पदार्थ मेरे नहीं और हो भी नहीं सकते, जाते समय एक भी ले नहीं जा सकता और आते समय एक भी नहीं लाया है, तो इनके प्रति ममत्व क्यों? जीवन जीते जीते थोड़े से जीवन में 60-70-80 साल का जीवन, और इसमें हम ममत्व भाव से क्यों जिए, क्यों आर्त रौद्र ध्यान करें? ये तत्व का विचार हमें करना चाहिए, और ऐसा तत्व का विचार करते करते प्रौढ़ता आएगी तो आपका परिग्रह छूट जाएगा, या तो आप अनुवृत्ति बनेंगे या तो महावृत्ति मुनि बनेंगे। दो रास्ते हैं आत्मकल्याण के लिए। तो इस दुनिया में वंदनी कौन है, ये पाठ यही समझा रहा है। वंदनी वो हैं जिनको पर परिग्रह के प्रति ममत्व भाव नहीं है, और वो भी दिगंबर मुनि कहो या अरहंत परमिष्टि कहो, दुनिया में तो है, ये दुनिया परिग्रह है सब, पर इन परिग्रहों के बीच बैठ करके भी क्या वो आत्म साधना नहीं कर रहे हैं? उनकी मन की पवित्रता देखो, पवित्रता के लिए कोई धक्का नहीं लग रहा है, मन की पवित्रता आत्मा की पवित्रता में कोई बाधा नहीं पहुंच रही है, ये उनको हुआ और आपको क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, ममत्व, एक ही शब्द का एक ही उत्तर। आपको श्रावक अवस्था में ध्यान क्यों नहीं होता, इस प्रश्न का एक ही उत्तर, ममत्व। टाइम पूर्ण हो गया है। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।